जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर सत हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मय की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम पहला स्कंद सातवां अध्याय द्रोण पुत्र को दंड। श्लोक संख्या 56 कौन सा है ऊपर श्लोक 56 56 है ना। विमुच्य रशना बद्धम बाल हत्या हत प्रभम तेजसा मणिना हीनम शिबिरात निरयापयत विमुच्य रशनाबद्धम बालहत्याहत प्रभम तेजसा मणिना हीनम शिबिरान्निरयापयत् विमुच्य रशनाबद्धम् बालहत्याहत प्रभम् तेजसा मणिना हीनम् शिबिरान्निरयापयत् जी को बोलेंगे विमुच्य उसे छोड़ देने पर रशना बद्धम रस्सियों के बंधन से बाल हत्या बालकों के वध से हत प्रभम शारीरिक कांति का क्षय तेजसा शक्ति से मणिना मणि से हीनम रहित शिबिरात खेमे से निरयापयत निकाल भगाया। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद: बाल हत्या के कारण वह अश्वत्थामा पहले ही अपनी शारीरिक कांति को खो चुका था और अब अपनी शीर्ष मणि खोकर वह शक्ति से भी हीन हो गया। इस प्रकार उसकी रस्सियां खोलकर उसे खेमे से बाहर भगा दिया गया। तात्पर्य: इस प्रकार भगवान कृष्ण तथा अर्जुन की बुद्धि के कारण अपमानित अश्वत्थामा एक ही साथ मारा गया और नहीं भी मारा गया। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। श्रीमद् भागवत के पहले स्कंध के सातवें अध्याय में प्रसंग ये चल रहा है कि जब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पांच पुत्रों की हत्या की और अर्जुन द्वारा वो दंडित हुए, उनको उनके सर का मुंडन करवा के और उनके सर पे जो मणि था उसको भी निकाल के, तो वो न केवल तेजहीन हो गए परंतु शक्तिहीन भी हो गए। तो इससे अधिक ब्रह्म बंधु को दंड नहीं दिया जा सकता है, ये आने वाले श्लोकों में हम देखेंगे। इतना दंड जो दिया था वो भी पर्याप्त था, इसलिए अभी अश्वत्थामा को बहिष्कृत कर बाहर कर दिया कि अब शिविर से निकल जाओ। रस्सी से अर्जुन ने अश्वत्थामा को बांध दिया था, अब रस्सी भी खोल दिया और उसको बाहर भगा दिया, चले जाओ यहां से। तो ऐसा अपमान ब्रह्म बंधु के लिए बहुत ही कठिन होता है सहन करने के लिए। यहां पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि अर्जुन और कृष्ण की बुद्धि के कारण अश्वत्थामा एक ही साथ मारा गया और नहीं भी मारा गया। कल हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे विरोधी आदेशों का पालन कभी कभी किया जा सकता है, हालांकि साधारणतः ये करना संभव नहीं है। जैसे कोई हमें कहता है अंदर बैठो और दूसरा कहता है बाहर जाओ, तो दोनों आदेशों का एक साथ कैसे पालन कर सकते हैं। परंतु कभी कभी धर्मशास्त्रों में जिनमें कि विविध प्रकार के धार्मिक सिद्धांत हैं हमारे जीवन के लिए, जीवन यापन के लिए, हमारे व्यवहार सोच विचार आदि के लिए, कभी कभी इन सिद्धांतों का विरोध होता है, टक्कर होता है एक दूसरे। कभी एक सिद्धांत ऐसे कहता है तो दूसरा सिद्धांत इसका बिल्कुल विपरीत कुछ कहता है, तो कैसे इनका समन्वय किया जाए ये एक धर्म संकट जैसे हो जाता है। इसलिए धर्म के जो नियम हैं, धर्म के सिद्धांत हैं, बहुत सूक्ष्म हैं और इनको समझने के लिए बहुत बुद्धि चाहिए, बहुत ज्ञान चाहिए, बहुत शुद्धता पवित्रता चाहिए। समय समय पर ऐसे धर्म संकट आते हैं, जैसे अम्बरीश महाराज के जीवन में हम देखते हैं कि जब उनके यहाँ दुर्वासा मुनि आए तो वो अपने व्रत का पारण करने ही वाले थे और उस समय दुर्वासा मुनि जो कि अतिथि बन के आए थे वो स्नान करने गए और उनके पारण का समय निकल जा रहा था। तो कैसे इन दोनों विरोधी चीजों का समन्वय करना है ये उनके सामने समस्या थी। अतिथि के लौटने के पहले कुछ खाना नहीं चाहिए, एक प्रथा है धर्मशास्त्र में, ऐसे बताया जाता है कि अतिथि सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। जब अतिथि कोई आते हैं हमारे यहाँ तो पहले उनको खिलाना चाहिए, बाद में हमें लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम पहले खाएं फिर बाद में अतिथि को खिलाएं, नहीं। तो ये एक बात है। दूसरी बात है कि यहां जब हम व्रत का पालन करते हैं तो उसको पूर्ण करना चाहिए। यदि कोई एकादशी का व्रत हो और फिर पारण के लिए कोई समय होता है, उस समय के भीतर करना चाहिए क्योंकि हमने व्रत लिया है। लेकिन अब यहां अम्बरीश महाराज के साथ क्या हो रहा था, दोनों ही ये जो सिद्धांत हैं, दोनों नियम हैं, इनमें टकराव आ गया, टक्कर आ गया। ये करना है या ये करना है, दोनों एक साथ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इसलिए उन्होंने बहुत विचार किया क्या करना चाहिए। फिर उन्होंने अपने मंत्रियों से, ब्राह्मणों से विचार विमर्श किया, उनसे सलाह ली कि हमें क्या करना चाहिए। फिर निष्कर्ष ये निकला कि आप चरणामृत के 2-3 बूंद का पान कर लो, क्योंकि चरणामृत लेने से उपवास टूटता है और भोजन नहीं लेने के बराबर भी है। तो आपके व्रत का जो नियम है वो पूर्ण हो जाएगा। और साथ साथ चरणामृत भोजन नहीं माना जाता, इसलिए आपने अतिथि के पहले भोजन लिया ये भी दोष आपके ऊपर नहीं आएगा, इसलिए चरणामृत ले लो। तो उन्होंने थोड़ा चरणामृत ले लिया, परंतु अपने योग बल से दुर्वासा मुनि को यह पता चला कि कुछ भी नहीं लेना चाहिए था मेरे आने से पहले, पानी भी नहीं लेना चाहिए था। तो फिर आपको पता है कैसे संकट आ गया अम्बरीश महाराज के जीवन में। फिर भी क्योंकि वो महान भक्त हैं इसलिए भगवान ने उनकी रक्षा की, बल्कि भगवान के भक्त सुदर्शन ने उनकी रक्षा की। तो इस तरह हमारे दैनिक जीवन में जो व्यक्ति धर्म का पालन करता है उसके जीवन में भी कई ऐसे विकट परिस्थितियां आ सकती हैं जहां विरोधी आदेश शास्त्रों में से दिखाई पड़ते हैं, ऐसे करना कि वैसे करना। जैसे हमारे भक्ति जीवन में भी होते हैं, जैसे बताया जाता है कि जैसे किसी सन्यासी को देखा जाए पहली बार दिन में विशेष करके तो प्रणाम करना चाहिए। यह भी बताया जाता है कि भगवान के अर्चक विग्रह के सामने किसी को नहीं प्रणाम करना चाहिए। तो यदि समझ लीजिए किसी के गुरु महाराज उनके सामने पहली बार मंदिर में दिखे और दर्शन खुले हैं तो क्या करना चाहिए। दोनों आदेशों में थोड़ा विरोध है, एक आदेश कहता है कि उनको प्रणाम करना चाहिए, दूसरा आदेश कहता है कि भगवान के सामने किसी को नहीं करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए। तो ये सारी सूक्ष्म बातें होती हैं। और जो धर्म के पथ में चलना चाहता है बहुत गहराई से इसका विचार करना चाहिए। धर्म के सिद्धांत इतने मुश्किल है समझना कभी कभी, इसलिए तो राजाओं को इतने बड़ी सभा की आवश्यकता होती थी, इतने सारे ब्राह्मणों से सलाह लेते थे। जब शुरुआत में हमें ज्यादा पता नहीं होता है, हमें लगता है बस साधारण सब आसान है सब कुछ, लेकिन जैसे गहराई में धर्म के बारे में पढ़ने जाते हैं, सुनते हैं, तब पता चलता है कि इतना आसान नहीं है, बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म बातें हैं। तो ये सब ऐसे क्यों होता है, क्योंकि संसार ही है ऐसा। और इसके अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण के तत्व को जानने के लिए आध्यात्मिक विषयों के क्षेत्र में भी ये देखा जाता है कि ऐसे विरोधी तत्व अनेक पाए जाते हैं। भगवान के लिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अभी जैसे एक उदाहरण ले लें, हमें कोई कहे, जैसे एक उदाहरण दिया था हमने, अंदर रहो या बाहर जाओ, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, यहां रहो या वहां रहो, दोनों जगह एक साथ नहीं रह सकते, परंतु भगवान के लिए ये संभव है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान कृष्ण के बारे में, गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो, भगवान श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन में निवास करते हैं। साथ साथ में ये भी कहते हैं अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, कि हर एक ब्रह्मांड के भीतर हैं वो, हर एक अणु कि भीतर भी भगवान कृष्ण विराजमान है, तो वो सर्वव्यापी हैं। अभी कैसे हो सकता है? भगवान गोलोक वृंदावन में निवास करते हैं और साथ साथ हर एक अणु के भीतर भी हैं, ये कैसे हो सकता है? तो ये एक विरोधाभास प्रतीत होता है। परंतु श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि भगवान जो कि परम सत्य हैं और जिनकी शक्ति अचिंत्य है, अपार है, उनमें ये सारे तथा कथित विरोधाभासों का समन्वय होता है। जितने भी द्वंद्व हैं परम सत्य में मिल जाते हैं। ये भौतिक जगत द्वंद्वों की दुनिया है, इसलिए यहाँ पे कभी गर्म है तो कभी ठंडा है, कभी मान है तो कभी अपमान है, कभी सुख है तो कभी दुख है। इस तरह से ये द्वंद्वों की दुनिया चलती रहती है। जब भी हम सुखी होते हैं तो दुखी नहीं होते, जब दुखी होते हैं तो सुखी नहीं होते। क्या सब साथ में हो सकते हैं? हम एक साथ में मुश्किल है, परंतु भगवान के लिए सब कुछ संभव है, क्योंकि वो परम स्तर में स्थित है, आध्यात्मिक स्तर में स्थित हैं और साथ साथ उनकी शक्ति अचिंत्य है। जब तक हम इस बात को नहीं मानेंगे कि भगवान की शक्ति अचिंत्य है, हम कभी भी भगवान को समझ नहीं सकते। ये श्रील जीव गोस्वामी का निष्कर्ष है जो अपने षट संदर्भों में कहते हैं। इसलिए भक्तों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जानना कि भगवान की शक्ति अचिंत्य है, हमारे कल्पना के बाहर है, उनकी शक्ति असीमित है। असीमित शक्ति होने के कारण वो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है जो भगवान नहीं कर सकते। यदि कोई ऐसी चीज होती जो भगवान नहीं कर सकते तो फिर वो भगवान नहीं होते, फिर भगवान होने का क्या मतलब? तो इस तरह भगवत तत्व समझना बहुत आसान है, फिर ये सारे तथा कथित विरोधाभास आदि ये हमारे लिए आश्चर्य की बातें नहीं बन जाएंगी। जैसे ईशोपनिषद में कहा गया है, तदे जति तन्नय जति तद्दूरे तद्वंत के तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। तदे जति तन न एजति, एजति मतलब चलना, तो वो चलते हैं। तद एजति तन न एजति, और वो नहीं चलते हैं। अभी ऐसे कैसे हो सकता है? हम ऐसे कर सकते हैं क्या, एक साथ चलना भी और नहीं भी चलना? नहीं हो सकता, या तो हम चल रहे हैं या तो फिर नहीं चल रहे हैं। लेकिन भगवान एक ही साथ दोनों चीजें कर सकते हैं, चल भी सकते हैं नहीं भी चल सकते हैं। अब ये हमारी बुद्धि को घुमा देता है, ये ऐसे कैसे हो सकता है? तद दूरे तद वंतिके, भगवान दूर भी है पास भी है, ये कैसे हो सकता है? यदि हम कहते हैं कि गोविंद दत्त प्रभु दूर है तो वो दूर है, फिर गोविंद दत्त प्रभु यहां पास में नहीं हो सकते। उस समय जब गोविंद दत्त प्रभु हमारे पास में है तो फिर वो दूर नहीं हो सकते। ये भौतिक जगत में दोनों एक साथ में नहीं हो सकते, या तो वो दूर है या तो फिर पास में है, परंतु भगवान के साथ संभव है। तद दूर है तद वंत के, और भगवान साथ साथ में, तद अंतरस्य सर्वस्य, वो हर चीज के अंदर हैं, तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः, और हर चीज के बाहर भी हैं। हर चीज के अंदर होना, हर चीज के बाहर होना एक ही साथ में, ये कैसे संभव है? भगवान के लिए सब कुछ संभव है उनके अचिंत्य शक्ति के कारण। क्योंकि हमारी शक्ति अचिंत्य नहीं है, असीमित नहीं है, इसलिए हम इन चीजों को नहीं कर सकते हैं। काल और स्थान की सीमाएं भगवान पर लागू नहीं होती हैं, इसलिए भगवान सब जगह एक समय पर हो सकते हैं, हम ऐसे नहीं कर सकते। भगवान ने जब रासलीला की थी तो अनगिनत गोपियों के साथ में वो नृत्य कर रहे थे, हर एक गोपी के साथ कृष्ण थे, ये कैसे संभव है? कृष्ण के लिए संभव है, उनके लिए कोई चीज असंभव नहीं है। जब हम कल गुरुप्रसाद महाराज जी से सुन रहे थे कि रथ यात्रा के समय जब संकीर्तन कर रहे थे रथ के समक्ष श्री चैतन्य महाप्रभु, तो भक्तों के साथ दल बनाए थे और महाराज प्रताप रुद्र के ऊपर ऐसी कृपा श्री चैतन्य महाप्रभु की हुई कि उन्होंने प्रत्यक्ष देखा कि महाप्रभु सातों दलों में एक साथ में है और कोई नहीं देख पा रहा था, केवल गिने चुने उनके जो पार्षद थे वो इस बहुत ही गुह्य चीज को देख पा रहे थे, सभी लोग नहीं देख पा रहे थे। तो ये कैसे हो सकता है कि एक ही समय चैतन्य महाप्रभु सात स्थानों में थे और कीर्तन कर रहे थे? तो ये परम सत्य के लिए संभव है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसमें लगता है कि विरोध है, विरोधाभास है, परंतु भगवान के लिए नहीं है। भगवद गीता के 9वें अध्याय में भी भगवान कहते हैं, मया तदमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मत स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः। वो कहते हैं मत स्थानि मया तदमिदं सर्वं, कि मेरे द्वारा या मेरे अव्यक्त मूर्ति द्वारा मैं सब जगह व्याप्त हूं, सारे जगत में मैं व्याप्त हूं, फैला हुआ हूं मैं। मया तदम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, अव्यक्त मूर्ति मेरी। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान सब जगह हैं, वो दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन क्योंकि हमारी दृष्टि नहीं है, हमारे भौतिक दृष्टि से भगवान को हम नहीं देख सकते। भगवान को देखने के लिए हमें दिव्य चक्षु चाहिए, आध्यात्मिक नेत्र चाहिए। साधारण आंखों से भगवान को नहीं देखा जा सकता, इसलिए भगवान अर्चा विग्रह का रूप लेते हैं ताकि इन साधारण आंखों से भी हम भगवान को देख सकें। परंतु साधारणतः भगवान के मूल रूप को हम नहीं देख सकते भौतिक आंखों से, आध्यात्मिक दृष्टि होनी चाहिए। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जिनके नेत्रों में कृष्ण प्रेम का अंजन लगाया हुआ है, ऐसे व्यक्ति सदैव संतः सदैव हृदयेषु, अपने हृदय में भगवान श्री श्याम सुंदर श्री कृष्ण का दर्शन करता है। तो भगवान का दर्शन उस व्यक्ति के लिए संभव है जिसका हृदय पूरी तरह से अनर्थों से मुक्त हो चुका है और उसके हृदय में भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम है। तो इसलिए यहां कृष्ण कहते हैं अव्यक्त मूर्तिना, कि भगवान अवश्य हैं परंतु इस रूप में हैं, आध्यात्मिक सच्चिदानंद रूप में, जिनका दर्शन हम भौतिक आंखों से नहीं कर सकते। और फिर वो कहते हैं मत स्थानि सर्वभूतानि, मुझ में सारे प्राणी आश्रय ले रहे हैं, न च अहम तेषु अवस्थित, परंतु मैं उनमें नहीं हूं। तो जब श्री कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ मुझ में है, और फिर अगले ही बाद वाले श्लोक में ही कहते हैं नच मत स्थानि भूतानि पश्यमे योगमैश्वरम, इसके पहले श्लोक में कह चुके हैं कि सब कुछ मुझ में है, मत स्थानि सर्वभूतानि, और अब बाद वाले श्लोक में क्या कहते हैं नच मत स्थानि भूतानि, सब कुछ मुझ में नहीं है। विरोधाभास लग रहा है, अरे भगवान क्या कह रहे हैं, पहले श्लोक में कहते सब कुछ मुझ में है, बाद वाले श्लोक में कह रहे हैं सब कुछ मुझ में नहीं है, इसका क्या मतलब है? प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं कि इसका मतलब है कि वास्तव में उदासीन है भगवान, विरक्त है इस भौतिक जगत से। यद्यपि सब कुछ उनके अंदर विराजमान है, फिर भी भगवान इससे संबंध, इससे स्पर्श नहीं करते हैं, इससे विरक्त ही रहते हैं, उदासीन रहते हैं, अपने शक्तियों के द्वारा सब कुछ करवाते हैं। तो सब कुछ उनकी शक्तियों पर आधारित है और भगवान की शक्तियां उनकी सेवा के लिए तत्पर रहती हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिखाई देते हैं शास्त्रों में। अब देखिए, हमने अभी अभी कहा कि भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक अणु में है, और हम ये भी जानते हैं कि भगवान के उदर में, उनके पेट में सारे ब्रह्मांड हैं। आपको पता है कि जब श्री कृष्ण के ऊपर आरोप लगा था, ये आवाज क्या आ रहे हैं? अच्छा ठीक है, तो शांति हो और नहीं भी हो एक साथ में संभव नहीं, आवाज हो भी नहीं भी भौतिक जगत में नहीं हो सकता है। तो नहीं, वो कोई गए हैं, कोई बात नहीं, कोई गए हैं बोलने के लिए। तो जब माता यशोदा ने सुना अन्य बालकों से, बलराम ने भी जाके बताया कि कृष्ण मिट्टी खाई है, तो माता यशोदा ने डांटना शुरू किया, तुमने मिट्टी खाई है? तो भगवान कृष्ण का, नहीं नहीं, ये सब षड्यंत्र रचा रहे मेरे खिलाफ, मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, झूठ बोल रहे हैं ये सब, बलराम भी झूठ बोल रहे हैं, हाँ सभी झूठ बोल, सब मिले हुए हैं। अच्छा, तो मैं देखती हूँ, तो मुँह खोलो, तुमने मिट्टी खाई है कि नहीं, देखेंगे। फिर वो मुँह खोल लेते हैं श्री कृष्ण, और जब माता यशोदा मुँह के अंदर देखती हैं तो क्या देखती हैं? सारा ब्रह्मांड देखती हैं उनके मुंह के अंदर। तो उनके उदर में सब कुछ है, सब कुछ, सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान के उदर में हैं। तो देखिए, सारे सारी सृष्टि भगवान के अंदर है और भगवान एक अणु में है। सर चकराने वाली बात है कि नहीं? सब कुछ भगवान के अंदर है और भगवान हर एक अणु में है। इसका मतलब है कि सब कुछ हर एक अणु में हो गया, सारा ब्रह्मांड एक अणु के भीतर स्थित है। ऐसे सर को चकराने वाली बातें आती हैं। भगवान के संबंध में जो भी कुछ चीजें हैं वो अचिंत्य हैं, असीमित हैं, इनको भौतिक बुद्धि से समझना मुश्किल। और इतना ही नहीं, वो भगवान श्री कृष्ण जिनके उदर में संपूर्ण सृष्टि रहती है, अब वही श्री कृष्ण माता देवकी के उदर में आ गए, उनके गर्भ में थे। इसलिए तो देवगण आए, माता देवहूति की प्रदक्षिणा उन्होंने की। तो इस तरह से भगवान की बातें, भगवान से संबंध जितने भी चीजें हैं, ये सब अद्भुत हैं। एक साथ ही विरोधी विचार सत्य होते हैं भगवान के संबंध में। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी बहुत सुंदर ढंग से बतलाया अचिंत्य भेदाभेद तत्व, कि कैसे एक ही साथ कई विरोधी विचार सत्य हो सकते हैं। ये प्रश्न आता है सदैव कि भगवान निराकार हैं या साकार हैं। अक्सर भारत में ये प्रश्न उठता है ना, कई लोग मानते हैं कि भगवान निराकार हैं, निर्विशेष हैं। कई लोग मानते हैं कि भगवान का रूप है। तो सही उत्तर क्या है? भगवान निराकार हैं या वह साकार है? दोनों है। दोनों कैसे हो सकते हैं? जैसे सूरज, सूरज का गोला है और सूरज के किरणें भी हैं। सूरज के गोले का आकार होता है, परंतु सूरज के किरणों का कोई आकार नहीं होता। तो सूरज के किरणों के द्वारा सूर्य सर्वव्यापी है संपूर्ण ब्रह्मांड में, परंतु सूरज अपने स्थान में है और उसका भी कोई आकार है, उसके भीतर सूर्य देव भी हैं जिनका व्यक्तित्व है। तो उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण एक स्थान में है, अपने गोलोक वृंदावन स्थान में है, परंतु उनके शक्तियों द्वारा वो सर्वव्यापी है और सब जगह रहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो गोलोक वृंदावन में निवास करते हैं, वो है मूल व्यक्ति भगवान, और उनकी जो शक्तियां हैं, जो उनके शारीरिक तेज के ऊपर आधारित हैं, वो सब जगह फैली हुई हैं। तो उनका निराकार स्वरूप उनके शरीर का तेज है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम। इसलिए एक ही साथ भगवान एक व्यक्ति भी है और निराकार भी है। ठीक उसी प्रकार से भगवान के कितने सारे अवतार हैं, जैसे श्री रामचंद्र हैं, श्री वराह देव हैं और कूर्म देव हैं, नरसिंह देव हैं, कितने सारे अनगिनत अवतार हैं। तो ये सब भगवान से भिन्न है या अभिन्न है? ये भगवान है, भगवान श्री कृष्ण से ये भिन्न है या अभिन्न है? आप क्या सोचते हैं? अभिन्न है, लेकिन रूप भिन्न है ना, कार्य भी भिन्न है, भाव भी भिन्न है। देखिए नरसिंह देव भगवान का रूप कैसा है और भगवान कृष्ण का रूप कैसा है, कोई समानता दिखती है दोनों में? कितना अंतर दिखता है? भगवान नरसिंह देव जैसे गरजते हैं वैसे श्री कृष्ण गरजते हैं नहीं? जब श्री कृष्ण रास लीला करते हैं नरसिंह देव ऐसे लीला करते हैं कभी? वृंदावन में श्री कृष्ण लीला करते हैं, उनके कंधे पे उनके ग्वाल बाल मित्र बैठ जाते हैं, उनके बाल खींचते हैं, उनको चिढ़ाते हैं, ऐसे किसकी मजाल है कि नरसिंह देव भगवान के साथ ऐसे करे? नहीं संभव है। तो देखिए भाव में अंतर, रूप में अंतर, कार्यों में अंतर, इतनी भिन्नता है नरसिंह देव और कृष्ण के बीच में, फिर भी दोनों एक ही हैं, क्योंकि वही श्री कृष्ण नरसिंह देव का रूप लेते हैं किसी विशेष भाव का को प्रकट करने के लिए, किसी रस का आस्वादन करने के लिए, किसी विशेष कार्य को संपन्न करने के लिए है वही व्यक्ति। जिस प्रकार से एक ही आदमी अलग अलग वस्त्र पहन के अलग अलग भाव में अलग अलग कार्य कर सकता है, जैसे आप में से कई ऐसे हैं जो व्यापार करते हैं, नौकरी में जाते हैं, तो जब आप मंदिर में आते हैं तो आप धोती कुर्ता पहन के आते हैं, तिलक ग्रहण करके आते हैं, आपका बोल चाल सब कुछ अलग होता है, प्रभु जी माता जी कहते हैं, हाथ में माला होती है। लेकिन जब आप दफ्तर जाते हैं वहां प्रभु जी माता जी नहीं होते कोई, वहां सबको अलग से बुलाना होता है, अलग से संबोधन करना होता है, वहां आप धोती कुर्ता में नहीं जा सकते, वहां हाथ में माला लेकर घूम नहीं सकते। तो आप भी देखते हैं कि मंदिर में आते हैं आपका रूप, आपका व्यवहार, आपका भाव अलग है, दफ्तर में जाते हैं आपका अलग है सब कुछ, किसी तीसरे जगह जाते हैं आप वहां भी सब बिल्कुल अलग है आपका। तो हम सब ऐसे कर सकते हैं तो भगवान क्यों नहीं कर सकते? तो भगवान भी करते हैं। तो भगवान अपने अपने इच्छा के अनुसार अलग अलग भाव आदि स्वीकार करते हैं। तो ये अचिंत्य भेदाभेद। तो श्री कृष्ण और उनके जितने भी अनगिनत अवतार हैं वो उनसे भिन्न हैं और अभिन्न भी हैं एक साथ में। तो दोनों चीज भिन्नता और अभिन्नता दोनों साथ में है। उसी तरह से जो जीव है वो भगवान से भिन्न है या अभिन्न है? दोनों ही गुण से, गुणवत्ता से अभिन्न है, मात्रा में भिन्न है, क्योंकि जीव अणु है, भगवान विभू है। इस तरह से अचिंत्य भेद तत्व का विचार भी अनेक दार्शनिक तत्वों के संबंध में किया जा सकता है। तो इस सारे विरोधाभास के तत्व तथा कथित विरोधाभास के तत्व हैं, परंतु भगवान भगवत तत्व समझने से इन सारे विरोधी विचारों का समन्वय हो सकता है। तो चाहे वो दार्शनिक क्षेत्र में हो, चाहे वो हमारे धर्म शास्त्र के संबंध में हो, जो कि हमारे दिनचर्या दैनिक कार्यों के संबंध में हो, कई बार ऐसे विरोधी विचार, विरोधी आज्ञाएं मिलती हैं। कैसे बुद्धिमत्ता से इनका समन्वय किया जाए, इसकी आवश्यकता है। जैसे अर्जुन और श्री कृष्ण ने इतनी बुद्धिमानी से इनका समन्वय कर लिया, तो हमारे जीवन में भी हमें शास्त्रों के आधार पर ज्ञान प्राप्त करके ऐसे करना होता है। हरे कृष्णा। आपके कोई प्रश्न आदि हैं? ब्राह्मण पुत्र उचित था क्या? ये अधिकार किसको है? सबसे ज्यादा अधिकार माँ को होता है ना। जब माँ ने ही क्षमा कर दिया तो हम कौन होते हैं कुछ बोलने वाले? जब किसी बच्चे को कोई कष्ट पहुंचता है तो सबसे ज्यादा कष्ट किसको पहुंचता है? माँ को पहुंचता है। तो 5 बच्चे द्रौपदी के मर गए और द्रौपदी देवी स्वयं अब क्षमा करना चाह रही है, तो हम क्या बोल सकते हैं? क्यों? वो देख सकते हैं कितनी महान भक्त हैं, वैष्णवी हैं द्रौपदी। लेकिन देखिए, वही द्रौपदी ने दुशासन को, दुर्योधन को क्षमा नहीं किया। व्रत लिया था और भीमसेन ने भी व्रत लिया था उस समय, और भीमसेन ने व्रत पूर्ण किया कि दुशासन का छाती फाड़ के मैं खून पीऊंगा और दुर्योधन की जंघे में अलग कर दूंगा। कर दिया, करके दिखाया भीमसेन ने। क्योंकि कौरवों में अर्थात दुर्योधन, दुशासन आदि एक ओर, और अश्वत्थामा, इन दोनों में थोड़ा अंतर था। अंतर क्या था? दुर्योधन, दुशासन आदि बिल्कुल अहंकारी और द्वेषी, लोभी लोग थे, कामुक लोग थे। केवल लोभ और काम के लिए उन्होंने द्रौपदी देवी के प्रति ऐसे किया। परंतु अश्वत्थामा ने ऐसे क्यों हुआ, क्यों किया? वो अपना आत्मसंतुलन क्यों खो बैठे? क्योंकि उनके पिता की मृत्यु इस ढंग से हुई थी, इसलिए वो गुस्सा उबल रहा था। तो द्रौपदी जानती थी कि अश्वत्थामा साधारणतः ऐसे नहीं करते, परंतु दुर्योधन, दुशासन तो साधारणतः ऐसे ही करते। जो अश्वत्थामा ने किया, गलत किया, बहुत गलत किया, और दंडित हुए भी, परंतु इसके पीछे जो पृष्ठभूमि है, जो बैकग्राउंड है, वो अलग है। इसलिए द्रौपदी देवी ने अश्वत्थामा को क्षमा कर दिया और उनको नहीं किया, दुर्योधन और दुशासन को। और ये ब्राह्मण थे ना अश्वत्थामा, ये दूसरा कारण था, और उनके गुरु के पुत्र थे। ठीक है। हाँ, प्रश्न ये है कि कई बार कोई भक्त कहते हैं हम अलग अलग भक्तों से वही प्रश्न करते हैं तो हमें अलग अलग उत्तर मिलते हैं, तो फिर वो थोड़े भ्रमित हो जाते हैं। तो हम उनको समझाने का प्रयास करते हैं कि दुनिया में हर चीज काला और सफेद नहीं है, बीच के भी कोई चीजें होती है। तो ये कैसे समझाया जा सके उनको, ये प्रश्न है। हाँ, ये सही है, दुनिया में हर चीज काला और सफेद नहीं है, बीच के भी रंग होते हैं, और बीच के रंगों के भी कितनी विविधता है। अभी यहां मंदिर में यदि किसी से पूछा जाए कि भगवान कौन है, परम सत्य कौन है, वो कहेगा कृष्ण, ये उत्तर सबसे एक ही मिलना चाहिए, इसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। कोई यदि कहे कि इंद्र परम सत्य है, ब्रह्मा परम सत्य है, तो गड़बड़ है कुछ। हाँ, तो कई ऐसे तत्व हैं जिनके बारे में किसी से भी पूछें तो उत्तर वही मिलना चाहिए। कलयुग का युग धर्म क्या है, कोई बोलेगा गरीबों को दान देना, नहीं चलेगा ये, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। तो इस मंदिर से जो भी संबंधित हैं उनको ऐसे जो मूल दार्शनिक तत्व हैं उनमें एक ही विचार होना चाहिए। परंतु जब सूक्ष्म बातें होती हैं, दार्शनिक हों, और खास करके ऐसे सूक्ष्म बातें जो कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में उतारने की बात आती है, व्यवहारिक जीवन में ऐसे करना कि वैसे करना, उसमें मतभेद हो सकता है। यह स्वाभाविक है, क्योंकि हम सब व्यक्ति हैं ना, हर एक व्यक्ति की अपनी विचारधारा होती है, अपना स्वभाव होता है, तो थोड़ा बहुत अंतर तो होगा। गोलोक वृंदावन में भी है, हर एक का स्वभाव गोलोक वृंदावन में अलग अलग है। जो रानियां थी कृष्ण की द्वारका में, उनके भी स्वभाव अलग अलग थे। सत्यभामा को उधर गुस्सा ज्यादा आता था कभी कभी, और रुक्मिणी देवी का बहुत सौम्य स्वभाव था। दोनों ही कृष्ण की सेवा करते थे। तो हमारे विचार आदि सब अलग हो सकते हैं, परंतु सब श्री कृष्ण पर केंद्रित हैं। तो सूक्ष्म बातें जब होती हैं ऐसे हो सकता है, इसलिए हमें चाहिए कि इनका समन्वय करने के लिए वरिष्ठ वैष्णव के पास हम जाएं, ताकि ठीक ठाक सही उत्तर मिले। और यदि कई वरिष्ठों के पास जाके हम पूछें, अलग अलग उत्तर मिले, तो इसका मतलब है कि सबके पास नहीं जाना चाहिए। सबके पास जाएंगे अलग अलग उत्तर मिलेंगे। हमें ऐसी तरह की नौकरी करनी चाहिए कि उस तरह की नौकरी करनी चाहिए, दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, इसमें अलग अलग भक्त अलग अलग तरह से उत्तर दे सकते हैं अपने अपने विचार से। इसलिए व्यक्ति भक्त को भी चाहिए कि ऐसे नहीं कि 50 जगह जाके वो सलाह ले सबसे, तो ऐसे भ्रमित हो जाएगा फिर, वो ना यहाँ का पालन कर पाएगा ना वहां का पालन कर पाएगा। ठीक है,
same devotee was asking that sometimes this sadhana is there, like seva is there, like hearing is there, reading is there, variety things are there, but sometimes devotees still go emphasize on one thing, or sometimes devotees emphasize on other things, sometimes devotees emphasize on other things. So he was asking that what is more important, so how one can
प्रश्न ये है। अच्छा, दशम स्कंद भागवत का है क्या इधर, कहीं अंदर से लाना पड़ेगा, कितना समय लगेगा? 2 मिनट। 9वां अध्याय, दशम स्कंद का 9वां अध्याय। तो प्रश्न ये है कि वो भक्त पूछ रहे थे कि भक्ति में भी हमारे बहुत सारे सेवाएं रहती हैं, कार्य रहते हैं, जब भी करना होता है, प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ना भी होता है, फिर कोई प्रचार के लिए भी जाना होता है, कोई सेवा भी होती है, ऐसे बहुत से रहते हैं चीजें। तो कई बार कोई भक्त किसी एक चीज पे जोर देते हैं, कोई दूसरे भक्त कहते हैं नहीं दूसरे चीज पे जोर देना, कोई लोग कहते हैं सारे चीजों पे जोर देना, तो क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, इसके पीछे ये है कि श्रील प्रभुपाद जी ने हमारे लिए एक संपूर्ण कार्यक्रम, दैनिक कार्यक्रम बनाया है, प्रातःकाल से शुरू होकर उसमें सब कुछ आ जाता है, भगवान का दर्शन, कीर्तन, जप, पूजा, प्रसादम, भागवत श्रवण, सब आ जाता है। और उसके बाद दिन के समय कभी भी हमें समय मिले तो हमें भागवतम गीता कुछ बैठ के पढ़ना चाहिए। और फिर सेवा के लिए समय है ही, फिर समय निकाल के सेवा कर सकते हैं। तो यदि हमें कोई समस्या हो तो हमारे जो भी अधिकारी व्यक्ति हैं उनसे हम सलाह ले सकते हैं, जैसे वो बतलाते हैं वैसे हमारा समय हमें बिताना चाहिए कि हमारी ये सेवा, इतने घंटे ये सेवा करनी है, फिर इतना घंटे पढ़ाई करना है, इतना घंटे फिर हम जप करते हैं, ये सब हमारी दिनचर्या बन जानी चाहिए। ठीक है, नौवा अध्याय पंद्रह चौदह देखिए, ये प्रसंग है जब माता यशोदा श्री कृष्ण को दूध पिला रहे थे और उधर चूल्हे पे दूध गर्म हो रहा था। तो जब चूल्हे में दूध उबल के आ रहा था तो माता यशोदा ने क्या किया, कृष्ण को नीचे रख दिया। कृष्ण को नीचे रख के वो चूल्हे पे गई। इधर कृष्ण को गुस्सा आया, मेरे को छोड़ के चूल्हे चली गई, अभी तक मेरी भूख मिटी नहीं है। तो अभी माता यशोदा ने क्या कोई गलती की, कृष्ण को भी दूध पिलाना था और वहां कृष्ण के लिए ही दूध था, उससे कुछ और बनाना था, तो ये छोड़कर दूसरी सेवा करने के लिए गई। तो प्रभुपाद इसके बारे में बताते हैं, ये तात्पर्य अंग्रेजी में है, मैं अनुवाद कह के सुनाता हूं। कभी कभी एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें एक से अधिक कार्य करने पड़ते हैं। इसलिए माता यशोदा के संदर्भ में कोई दोष नहीं था, जबकि उन्होंने श्री कृष्ण को अलग से रखा और दूध जो उबल रहा था उसको देखने के लिए चली गई। प्रेम और आसक्ति के स्तर पे भक्त का कर्तव्य होता है कि कभी वो एक चीज पहले करे और बाकी चीजें बाद में करें। इसका मतलब है कि हमें सोचना चाहिए कि कौन सी चीज अभी करनी चाहिए, कौन सी चीज बाद में करनी चाहिए। बहुत सारी चीजें करने के लिए होती हैं जीवन में, केवल भक्त के जीवन में नहीं, साधारण व्यक्ति के जीवन में भी कितने सारी चीजें होती हैं। दिन में एक ही कार्य नहीं होता है। जैसे गृहस्थ व्यक्ति है जो नौकरी में जाता है, उसको नौकरी भी करना होता है, घर भी संभालना होता है, सोना भी है, खाना भी है, कितने सारे कार्य होते हैं। उसी तरह से भक्त के लिए भी नाना प्रकार के सेवाएं होती हैं। तो आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्त का कर्तव्य ये बनता है कि वो थोड़े चीजों को पहले करे, अन्य चीजों को बाद में करें। लेकिन ये चयन कैसे करना है कि कौन सी चीजें पहले करनी है, कौन सी चीजें बाद में करनी है, ये जो बुद्धि है प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान कृष्ण देते हैं। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददाम बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयान्ति ते। जो सतत प्रेम पूर्वक सेवा में लगा रहता है भगवान कृष्ण के, उसे अंदर से ही भगवान सद्बुद्धि देते हैं ये निर्णय लेने के लिए कि अब मुझे कौन सा काम करना चाहिए, कौन सी सेवा मुझे अभी करनी चाहिए, कौन सी सेवा बाद में करनी चाहिए। तो श्री कृष्ण भावनामृत में सब कुछ क्रियाशील है और भगवान कृष्ण अंदर से मार्गदर्शन देते हैं भक्त को कि पहले क्या करना चाहिए और बाद में क्या करना चाहिए। तो जितने ज्यादा कृष्ण भावना भावित हम होते हैं वैसे वैसे हमें वो बुद्धि मिलेगी वो निर्णय लेने के लिए कि कौन सी सेवा कब करनी है, परंतु तब तक आदेशों का पालन करना ही अच्छा है। हमारे अधिकारी भक्त जो हैं वो हमें जो भी बताएंगे कि आप ये समय में ये करो, ये समय में वो करो, हमें वो करना चाहिए, फिर हम सुरक्षित हैं। प्रश्न ये है कि कोई भक्त ऐसे पूछ रहे हैं कि जप भी सेवा है और अन्य भी बहुत सारी सेवाएं होती हैं, तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि एक सेवा के बजाय दूसरी सेवा करें, तो जप की सेवा के बजाय हम दूसरा और करें? कोई आपातकालीन परिस्थिति हो तो उस समय के लिए जब जप का समय है हम कोई दूसरा सेवा दूसरी सेवा कर लें, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं है कि जप को करें ही नहीं, फिर बाद में जाके जब सेवा समाप्त हो जाएगी फिर वो जप करना है। जप अनिवार्य है, किसी भी हालत में प्रतिदिन करना है, और दीक्षा के समय भक्त व्रत लेता है कि मैं कम से कम 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करूंगा या करूंगी। तो ये ऐसी सेवा है जो सबको करना है, लेकिन अन्य सेवाएं हैं वो सबकी अलग अलग हो सकती हैं। थोड़े भक्त हैं जो भगवान का श्रृंगार करते हैं, आरती करते हैं, उपासना पूजा करते हैं, हो सकता है कई भक्त नहीं करते ये सेवा, वो दूसरे सेवा करते हैं, कोई रसोई घर में है, कोई प्रचार करते हैं, कोई कहीं और कुछ करते हैं, तो सबकी अन्य सेवाएं अलग अलग हो सकती हैं, परंतु जप की सेवा सभी को करनी है, इसमें कोई कम ज्यादा कम नहीं हो सकता। तो सुबह को यदि हमारा जप हम अच्छी तरह से कर लें, फिर बाद में अन्य सेवाएं दिन भर कर सकते हैं ना, ठीक है।
We are not qualified to preach because we don't have knowledge in our level, but still we are told to preach. But the question is that we are not qualified, but how we can preach? We are not qualified.
प्रश्न ये है कि हमें बताया जाता है कि हमें प्रचार करना चाहिए, परंतु हम योग्य नहीं है क्योंकि हमारे पास इतना ज्ञान नहीं है, तो हम कैसे प्रचार करेंगे योग्यता न होने पर? तो इसका उत्तर है कि कौन योग्य है प्रचार करने के लिए। जो व्यक्ति हृदय से श्रद्धालु है और भक्त बनना चाहता है वो योग्य है, और जो भक्तों के संग में आके सुनता है, प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान स्वीकार करता है ग्रंथों के द्वारा भक्तों के द्वारा, वो प्रचार करने के लिए योग्य है। बस इतना ही है कि जितना हम जानते हैं उतना हम प्रचार कर सकते हैं, जितना हमारी जितनी हमारी साक्षात्कार है उतना ही हम कह सकते हैं, और उससे ज्यादा यदि हमें कोई पूछे तो बताने हमें नहीं मालूम, आपको पूछ के बताएंगे। वो घटना सर्वविदित है कि एक 5 साल की बच्ची थी जो प्रभुपाद जी के एक शिष्या की बच्ची थी, 5 साल की थी। जब प्रभुपाद जी सत्संग कर रहे थे, आके व्यासासन पर बैठे थे, तो ये 5 साल की बच्ची हर एक के पास जाके उनको ऐसे पीठ पे के बोलती थी, पता है आपको कृष्ण भगवान है? तो प्रभुपाद कह रहे ये प्रचार कर रही है। अब 5 साल की बच्ची को कितना मालूम, लेकिन जो भी उसे मालूम है वो बता रही है, सही मालूम है, जो सही चीज है उसे दोहराना ये प्रचार है। तो जितना हमें सुना है सही सुना है उसको बताना चाहिए, ये पहली बात है। दूसरी बात, जितना हम प्रचार करते रहेंगे और जितना हम फिर सुनते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, जप करते रहेंगे, उतनी उतनी हमारी योग्यता और बढ़ती जाएगी। फिर भगवान वो सद्बुद्धि हमें देंगे अच्छी तरह से प्रचार करने के लिए। ठीक है, तो हर एक को प्रचार करना चाहिए, परंतु हाँ, ऐसा नहीं कि हम प्रचार करते रहें फिर बाकी हमारी चीजें नहीं करें, वो नहीं चलेगा। ठीक है, जो सही है। प्रश्न ये है कि कई बार ऐसे कोई दो कार्य होते हैं, दोनों में से एक को हमें करना ही करना है, दोनों में दंड मिलना है। साधारणतः हम ऐसे कोई मार्ग चुनते हैं जिसमें हमें कष्ट कम हो, तो कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? वो रास्ता चुनना चाहिए जो सही हो, जिससे भगवान कृष्ण प्रसन्न हो, वो चुनना चाहिए, चाहे उसमें दंड कम मिले ज्यादा मिले, ये हमारा मापदंड है। भगवान कृष्ण कैसे प्रसन्न होंगे, बस ये हमारी मूल बात है जीवन में। ठीक है, ठीक है, तो बहुत देर हो गई अभी, हाँ तो अभी 10 बजने को आए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।